नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी के दो सांसदों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय पर की गई टिप्पणियों को खारिज किया, कहा ये उनके निजी विचार। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस मुर्शिदाबाद हिंसा पर केंद्र को रिपोर्ट सौंपेंगे और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सामने भी इस मुद्दे को उठाएंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का दूसरा दौर संपन्न, वार्ता में प्रगति के संकेत। ईस्टर पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने लोगों को शुभकामनाएं दी। और आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने रोमांचक मैच में राजस्थान रॉयल्स को 2 रन से हराया। समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय और भारत के मुख्य न्यायाधीश के संबंध में पार्टी सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा की टिप्पणियां स्वीकार्य नहीं है। पार्टी ने दोनों सांसदों को ऐसी टिप्पणी से बचने की सलाह भी दी है। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये निजी बयान है और इन बयानों से पार्टी का कोई संबंध नहीं है। श्री नड्डा ने कहा कि पार्टी ने सदैव न्यायपालिका का सम्मान किया है। उन्होंने कहा कि देश की अदालतें लोकतंत्र का अभिन्न अंग हैं और संविधान की सुरक्षा का मजबूत स्तंभ हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉ सीवी आनंद बोस ने मुर्शिदाबाद जिले के अशांत क्षेत्रों का दौरा किया। दौरे के बाद उन्होंने कहा है कि वे मुर्शिदाबाद सांप्रदायिक हिंसा पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बातचीत करेंगे और मुर्शिदाबाद की वस्तु स्थिति पर केंद्र को रिपोर्ट सौंपेंगे।
It's a bounden duty of all concerned, particularly the government and all authorities, to instill confidence in them. That confidence building is the first part. Take care of the victims, address their needs, give them sense of security, give them the feeling that justice will be done. Establish peace by all counts in the villages and other places in Bengal. I will certainly give my reports to the state government and also the central government as the requirement is there.
उन्होंने कहा कि उन्हें पीड़ितों पर बार-बार हमलों की जानकारी मिली है जो सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं है। श्री बोस ने यह भी कहा कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के तैनाती के बाद से अशांत क्षेत्रों की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत की 4 दिन की यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। ये श्री वेंस की पहली भारत यात्रा होगी। श्री वेंस कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। वे जयपुर और आगरा भी जाएंगे। दोनों देश आपसी संबंधों में प्रगति की समीक्षा करेंगे। दोनों पक्ष प्रधानमंत्री मोदी की अमरीकी यात्रा के दौरान इस वर्ष 13 फरवरी को जारी भारत अमरीका संयुक्त बयान पर अमल पर समीक्षा भी करेंगे। दोनों देश आपसी हित के क्षेत्र वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श करेंगे। इटली की राजधानी रोम में अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का दूसरा दौर संपन्न हो गया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि बातचीत में प्रगति हो रही है और दोनों पक्ष कुछ बातों पर सहमत हुए हैं। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने भी कहा है कि दोनों पक्षों के बीच अच्छी प्रगति हुई है। वार्ता का पहला दौर पिछले सप्ताह ओमान की राजधानी मस्कत में हुआ था। तीसरे दौर की वार्ता भी 26 अप्रैल को मस्कत में ही होनी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
खुजली झटपट दूर करे
जालिम लोशन,
वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन।
समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आज ईस्टर है। मान्यता है कि गुड फ्राइडे पर ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ाए जाने के बाद आज ही के दिन उनका पुनर्जन्म हुआ था। आज इस अवसर पर दुनिया भर के गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाएं की जा रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लोगों को ईस्टर की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि ये त्यौहार निस्वार्थ प्रेम और सेवा का संदेश देता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि ईस्टर आशा और नएपन का प्रतीक है। मिजोरम में ये त्यौहार धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है।
ईस्टर
ईस्टर संडे मिजोरम में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। राज्य में सबसे बड़े ईसाई संप्रदाय प्रेसिबिटेरियन धर्म सभा, मिजोरम के बैप्टिस्ट चर्च और सॉल्वेशन आर्मी ने इस अवसर पर सूर्योदय सेवा का आयोजन किया। सॉल्वेशन आर्मी के बैंड पार्टी ने प्रेरणादायक प्रस्तुति दी। इस अवसर पर राज्य में सामुदायिक भोज का भी आयोजन किया जा रहा है। गिन गांगते की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल।
चेन्नई में भी ईस्टर के अवसर पर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईस्टर पर यूक्रेन में 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा की है। इस दौरान रूसी सेना कोई सैन्य कार्रवाई नहीं करेगी। श्री पुतिन ने आशा व्यक्त की है कि यूक्रेन भी इसका पालन करेगा। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन संघर्ष विराम का सम्मान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अप्रैल को सऊदी अरब की 2 दिन की यात्रा पर जेद्दाह जाएंगे। ये पिछले 4 दशक में किसी भारतीय प्रधानमंत्री के जेद्दाह की पहली यात्रा होगी। भारत और सऊदी अरब के बीच आर्थिक, रक्षा और सांस्कृतिक सहयोग के क्षेत्रों में मजबूत संबंध हैं। इससे पहले भारतीय प्रधानमंत्रियों की यात्राएं राजधानी रियाद तक सीमित रही हैं। जेद्दाह इस्लाम की 2 धार्मिक नगरी मक्का और मदीना का प्रवेश द्वार भी है। श्री मोदी की आगामी यात्रा सऊदी सुल्तान की पहली भारत यात्रा की 70वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हो रही है। एक रिपोर्ट।
भारत और सऊदी अरब के राजनयिक संबंध 1947 में भारत की आज़ादी के समय से ही हैं और पिछले 78 वर्षों में इसमें उल्लेखनीय प्रगति हुई है। 2016 में प्रधानमंत्री मोदी की सऊदी यात्रा दोनों देशों के संबंधों में एक महत्वपूर्ण पड़ाव थी। इस यात्रा के दौरान श्री मोदी को सऊदी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान किंग अब्दुल्लाजीज साश से सम्मानित किया गया था। 2019 में शहजादे मोहम्मद बिन सुल्तान ने भारत की और फिर श्री मोदी ने सऊदी की यात्रा की थी। सऊदी के शहजादे और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान के साथ श्री मोदी के घनिष्ठ संबंध हैं। दोनों नेता अब तक 5 बार मिल चुके हैं, जिसमें 2023 में G20 आयोजन में हुई मुलाकात शामिल है, जब भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे पर सहमति बनी थी। जेद्दाह से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में 17वें सिविल सेवा दिवस पर लोक सेवकों को संबोधित करेंगे। श्री मोदी लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए 16 अधिकारियों को प्रधानमंत्री पुरस्कार भी प्रदान करेंगे। ये पुरस्कार जिलों में समग्र विकास, आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम और नवाचार की श्रेणियों में दिए जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अमरीका और पेरू की यात्रा आज से शुरू हो रही है। वे अमरीका में सैन फ्रांसिस्को में 2 दिन रुकेंगी और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में हुअर इंस्टीट्यूशन में संबोधन देंगी। श्रीमती सीतारामन वाशिंगटन में 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की बैठकों में हिस्सा लेंगी। श्रीमती सीतारामन 26 अप्रैल को पहली बार पेरू यात्रा पर पहुंचेंगी। भारतीय जनता पार्टी आज से वक्फ सुधार जन जागरण अभियान शुरू कर रही है। इसका उद्देश्य वक्फ संशोधन कानून के फायदों के बारे में लोगों को जागरूक करना है। ये राष्ट्रव्यापी अभियान 5 मई तक जारी रहेगा। इस अभियान के दौरान भाजपा नेता और कार्यकर्ता मुस्लिम समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे। पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने इस महीने की 10 तारीख को नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में इस अभियान को शुरू किए जाने की घोषणा की थी। श्री नड्डा ने आरोप लगाया कि विपक्षी नेता वोट बैंक की राजनीति के लिए संशोधित कानून के प्रावधानों को लेकर मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कल पुणे में कानून में AI विषय पर आयोजित एक कानूनी सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि न्यायपालिका में AI की बढ़ती भूमिका के बावजूद मानव हस्तक्षेप अनिवार्य बना रहेगा।
जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही सारा काम कर देगा तो हम क्या करेंगे? ह्यूमन एलिमेंट कभी गायब नहीं होगा, उसका अपना रोल रहेगा। ये तो आपकी भूमिका है जो आप जो मैं बना। तो इसके 4 पॉइंट, जब हमारे बॉडी माइंड इंटरनेट और सॉफ्टवेयर में जाएंगे जो काम करेंगे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं कर सकता।
अमेरिका में हजारों लोगों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध प्रदर्शन किए हैं। ये प्रदर्शन अमेरिकी क्रांति के 250वें वर्षगांठ पर किए गए। ये प्रदर्शन वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के बाहर भी किए गए हैं। प्रदर्शन सामान्यतः शांतिपूर्ण थे, हालांकि कुछ जगहों पर टकराव की भी खबर है। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
भारतीय निशानेबाज अर्जुन बबूटा ने पेरू के लीमा में विश्व कप निशानेबाजी का रजत पदक जीत लिया है। बबूटा 10 मीटर एयर राइफल के फाइनल में चीन के लिहाओ शेंग से केवल 0.1 अंक से हारकर ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतने से चूक गए। प्रतियोगिता में भारत की सुरुचि इंदर सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण पदक जीते। उन्होंने महिलाओं की व्यक्तिगत स्पर्धा और सौरभ चौधरी के साथ मिक्स टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। इधर आईपीएल क्रिकेट में कल रात लखनऊ सुपर जायंट्स ने राजस्थान रॉयल्स को 2 रन से हरा दिया। जीत के लिए 181 रन के लक्ष्य के जवाब में राजस्थान रॉयल्स की टीम 5 विकेट पर 178 रन ही बना सकी। एक अन्य मैच में गुजरात टाइटंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 7 विकेट से हरा दिया। गुजरात ने 204 रन का लक्ष्य 20वें ओवर में हासिल कर लिया। प्रतियोगिता में आज चंडीगढ़ में पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से और मुंबई इंडियंस का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। उधर विश्व स्क्वाश चैंपियनशिप क्वालिफाइंग स्पर्धा की फाइनल में भारत के वीर चोटरानी और अनाहत सिंह आज मलेशिया के कुआलालंपुर में अपने अपने मुकाबले खेलेंगे। पुरुष वर्ग में चोटरानी का मुकाबला मलेशिया के अमीशन राज चंद्रन से होगा, जबकि महिला वर्ग में अनाहत सिंह का सामना हांगकांग की टोबी त्से से होगा।
जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के अधिकांश हिस्सों में कल तक हल्की बारिश होने की संभावना है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी कल तक तेज हवाओं के साथ मध्यम वर्षा हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में अगले 5 दिन के दौरान तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार विदर्भ में अगले 3 दिन तक लू की आशंका है। आज मध्य महाराष्ट्र और बुधवार तक गुजरात में गर्म और आर्द्र मौसम का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों के सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
धन्यवाद लवलीन। भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता अंतिम चरण की ओर बढ़ने को जनसत्ता ने प्रमुखता से दिया है। पत्र लिखता है, इस वार्ता में द्विपक्षीय एफटीए पर बातचीत जल्द पूरा करने की इच्छा और सकारात्मकता दिखाई दी। गृहमंत्री अमित शाह का ये कहना कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता जरूरी, दैनिक जागरण में है। पत्र में आगे उनके हवाले से लिखा है, आहार की औषधि है को समूचा विश्व स्वीकार कर आगे बढ़ रहा है। देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग परीक्षा जेईई मेन के परिणाम घोषित होने और टॉपर का ये कहना कि मोबाइल से दूरी, यही मेरा सक्सेस मंत्र, नवभारत टाइम्स की पहली खबर है। अमेरिका के प्रतिस्पर्धी बाजारों में पसंदीदा विकल्प बन रहे हैं भारतीय ताजे फल, हरी भूमि की खबर है। पत्र के अनुसार पहली बार समुद्र के रास्ते अमेरिका जा पहुंची 12.5 टन अनार के खेप। हिंदुस्तान ने इस दिलचस्प खबर को सचित्र दिया है कि रोबोट पहली बार इंसानों के साथ 21 किलोमीटर मैराथन में दौड़े। पत्र कहता है, पेइचिंग में आयोजित हाफ मैराथन में यह अनोखा नजारा देखने को मिला। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, रोबोट के साथ हुई दौड़ में इंसान की जीत। सियाचिन ग्लेशियर में तैनात सैनिक भी अब मोबाइल नेटवर्क में, शीर्षक से राष्ट्रीय सहारा लिखता है, सेना ने गलवान सियाचिन ग्लेशियर सहित पूरे लद्दाख में मोबाइल संपर्क की सुविधा प्रदान की है और अब दुनिया के कुछ सबसे दुर्गम इलाकों में तैनात सैनिक अपने प्रियजनों से संपर्क में बने रह सकते हैं। दैनिक भास्कर की विशेष खबर है, देश के 50 से अधिक स्टार्टअप इस बात पर कर रहे हैं काम, करियर से लेकर भविष्य की बीमारी तक के राज का पता चल सके। पत्र के अनुसार डीएनए स्क्रीनिंग के जरिए भविष्य के गर्त में छिपे शरीर के रहस्य जानने पर तेजी से काम हो रहा है।
धन्यवाद फरहत। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी के 2 सांसदों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय पर की गई टिप्पणियों को खारिज किया, कहा ये उनके निजी विचार। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस मुर्शिदाबाद हिंसा पर केंद्र को रिपोर्ट सौंपेंगे और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सामने भी इस मुद्दे को उठाएंगे। अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अमरीका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का 2रा दौर सम्पन्न। वार्ता में प्रगति के संकेत, ईस्टर पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने लोगों को शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।